पेश आज के मुख्य समाचार विशाली जैन के साथ। क्वींसलैंड स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा, सालों बाद भी हो सकती हैं कोरोना अस्पताल भर्तियां। नहीं रहे भारत के मशहूर संगीत निदेशक बप्पी लाहिरी। और विक्टोरिया ने 2026 में कॉमनवेल्थ खेलों की एकल मेजबानी के लिए शुरू की बिड। और अब खबरें विस्तार से। विक्टोरिया ने आज 18 कोरोना संबंधी मृत्यु और 8,149 नए कोरोना मामले दर्ज किए हैं। राज्य में 397 कोरोना मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 68 लोग गहन चिकित्सा केंद्र में देखभाल पा रहे हैं। वहीं न्यू साउथ वेल्स में 27 कोरोना संबंधी मृत्यु और 10,463 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में 1,478 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 92 लोग गहन चिकित्सा केंद्र में देखभाल पा रहे हैं। और तस्मानिया ने आज 625 नए कोरोना मामले दर्ज किए हैं। वहीं क्वींसलैंड स्वास्थ्य के अधिकारियों का कहना है कि हालांकि अस्पताल व्यवस्था पर दबाव घटा है, लेकिन आने वाले कुछ सालों तक कोरोना संबंधी मरीज अस्पताल में भर्ती होते रहेंगे। राज्य में फिलहाल इस बीमारी के साथ 404 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। यह तब आता है जब आज क्वींसलैंड में 12 कोरोना संबंधी मृत्यु और 6,596 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री इवेट डात का कहना है कि अब भी राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी मांग है।
When COVID settles down, there'll still be COVID cases, and the Chief Health Officer and I had this discussion earlier this week. There will still be COVID patients in our hospitals for months and months, if not, you know, in future years to come. So we'll still be managing them, but we're not going to be managing them in the numbers that we're seeing today.
New South Wales ki poorv Premier Gladys Berejiklian ki sansadiya seat Willoughby mein हुए बाय इलेक्शंस के नतीजे दुविधा में पड़ सकते हैं। इस सीट से नए लिबरल उम्मीदवार टिम जेम्स 51.9% की बढ़त से आगे चल रहे हैं, लेकिन स्वतंत्र उम्मीदवार लारिसा पेन भी 48.1% के साथ तेजी से बढ़ रही हैं। एक तरफ जहां गिनती जारी है, वहीं न्यू साउथ वेल्स कोषाध्यक्ष मैट कीन आश्वस्त हैं कि उनकी पार्टी इस सीट को दोबारा जीत लेगी। आज सुबह 2GB रेडियो से बात करते हुए वे बोले,
Willoughby went to election, which was when Gladys ran in 2003. She only won it by 144 votes. So Tim's got a landslide ahead of him compared to what Gladys had back in 2003. I'm confident we'll get over the line, but we're not going to count our chickens yet. We'll go through the process and see what the people of Willoughby decide.
Australian Greens Party ने New South Wales सरकार की उन खबरों के आधार पर निंदा की है, जिनमें कहा गया है कि सरकार उन स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ कदम उठाएगी जो बेहतर काम की परिस्थितियों के लिए हड़ताल करेंगे। हजारों नर्सें और दाई मंगलवार यानी 15 फरवरी को स्टाफ और वेतन दोनों की कमी के चलते हड़ताल पर चले गए थे। अब खबरें आ रही हैं कि न्यू साउथ वेल्स हेल्थ इन कर्मचारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही कर सकता है। ग्रीन सांसद केट फेयरमैन का कहना है कि ये चौंकाने वाली बात है कि सरकार थके हुए इन कर्मचारियों का सहयोग करने की बजाय इन्हें सजा दे रही है।
Nurses and midwives need solutions and support from the government, not threats of disciplinary action. This is outrageous at a time when nurses are resigning because they cannot get the support they've been asking for from the government.
और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। यूक्रेन ने रूस पर साइबर हमले का आरोप लगाया है। वहीं पश्चिमी ताकतें रूस के अपने कुछ सैनिक पीछे लेने के वक्तव्य पर विश्वास नहीं कर रही हैं। जर्मनी और रूस के बीच हुई देर रात की बैठक के बाद रूस ने ऐलान किया था कि वे यूक्रेनियाई सीमा से अपने 1.5 लाख सैनिक हटा रहा है, पर अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि वे अभी तक ऐसा कुछ सचमुच होने की पुष्टि नहीं कर पाए हैं, और इसीलिए श्री बाइडेन का कहना है कि हमले की संभावना अब भी बहुत अधिक है।
The Russian Defense Minister reported today that some military units are leaving their positions near Ukraine. That would be good, but we have not yet verified that. We have not yet verified the Russian military units are returning to their home bases. Indeed, our analysts indicate that they remain very much in a threatening position. And the fact remains, right now, Russia has more than 150,000 troops encircling Ukraine and Belarus, and along Ukraine's border.
कैनेडियाई सरकार आपातकाल लगाकर देश में जारी ट्रक ड्राइवरों द्वारा प्रदर्शनों को रोकने का प्रयास कर रही है। अनिवार्य कोरोना टीका नियमों के विरुद्ध जारी इन प्रदर्शनों से देश की राजधानी ओटावा चरमरा गई है। आपातकालीन अधिकारों के अंतर्गत फेडरल सरकार सुरक्षा के नजरिए से कोई भी कदम उठा सकती है। प्रधानमंत्री ट्रूडो का कहना है कि इस कदम से प्रदर्शनकारियों की खतरनाक और गैरकानूनी गतिविधियों को रोका जा सकेगा।
Time-limited, geographically targeted, as well as reasonable and proportionate to the threats they are meant to address.
वहीं अमेरिका के सैंडी होक एलिमेंट्री स्कूल में साल 2012 में हुई शूटिंग के 9 पीड़ित परिवारों को मिलने वाले मुआवजे की रकम तय हो गई है। इन परिवारों ने राइफल निर्माता कंपनी के खिलाफ मुकदमे में 102 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का मुआवजा जीता है। बता दें कि इस हमले में 20 पहली कक्षा के बच्चे और 6 अध्यापकों ने अपनी जान गंवा दी थी। राइफल बनाने वाली कंपनी रेमिंगटन ने इस बात की भी हामी भरी है कि वे बंदूक को बेचने के तरीके को भी सार्वजनिक करेगी। पीड़ित परिवारों ने 2015 में एक मुकदमा दायर किया था जिसमें कहा गया था कि इस बंदूक को बेचने का एड इस तरह से बनाया गया था कि ये नौजवान लड़कों को निशाना बनाए और यह कि इस बंदूक को सार्वजनिक रूप से बेचा ही नहीं जाना चाहिए था। परिवारों के वकील जोशुआ कौशफ का कहना है कि यह मामला मुआवजे का नहीं पर भविष्य में ऐसे हादसे रोकने का है।
When you experience something like somebody being told they're getting a certain amount of money, a lot of money, and having that hurt, these families, they would pay everything, they'd give it all back just for one minute. That would be true justice.
अमेरिका में एक महिला विश्व में एचआईवी से ठीक होने वाली तीसरी व्यक्ति बन गई है। ये 64 वर्षीय मिश्रित रंग की महिला ल्यूकेमिया की मरीज है। शोधकर्ताओं का कहना है कि उनकी जाति और लिंग एचआईवी का इलाज ढूंढने की ओर एक बड़ा कदम है। इन महिला को ऐसे व्यक्ति से बोन मैरो मिला था जिनमें एड्स के वायरस के खिलाफ प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता थी। उपचार मिलने के 14 महीने बाद भी वे वायरस मुक्त हैं। और अब खबरें भारत से। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर कंपोजर बप्पी लाहिड़ी का मंगलवार की रात को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। प्यार से बप्पीदा के नाम से जाने वाले संगीतकार 69 वर्ष के थे। जानकारी है कि वे जुहू के क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती थे। वे पिछले साल कोरोना से भी संक्रमित हो गए थे। क्रिटिकेयर अस्पताल के डॉक्टर दीपक नमजोशी ने बताया कि बप्पीदा पिछले एक महीने से बीमार चल रहे थे, उनके फेफड़ों में खराबी आ गई थी। वहीं यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते तनाव और यूक्रेन की सीमा पर रूसी सैन्य जमावड़े की खबरों के बाद भारत ने यूक्रेन में रह रहे अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने का आदेश जारी किया था। वहां पढ़ रहे छात्रों से एनडीटीवी ने बात करते हुए बताया कि सरकार के इस निर्देश का पालन करने में वहां कई चुनौतियां पेश आ रही हैं। यूक्रेन में रह रहे एक छात्र हर्ष गोयल का कहना है कि स्थिति वास्तव में तनावपूर्ण है। कुछ छात्रों ने पहले ही अपनी उड़ानें बुक कर ली थीं, लेकिन अब कई उड़ानें रद्द हैं। इसके अलावा लौटने की टिकट भी बहुत महंगी है। छात्रों का कहना है कि वे लगातार ईमेल और फोन के जरिए भारतीय दूतावास से संपर्क में हैं। दूतावास से उन्हें आश्वासन मिला है कि वे अभी सुरक्षित हैं और अगर परिस्थिति बदलती है तो वे छात्रों को वहाँ से निकाल लेंगे। और अब डॉलर का हाल। आज यानी बुधवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 53.78 रुपये और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 72 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। विक्टोरिया ने साल 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की एकल मेजबानी के लिए बिड पेश की है। अगर विक्टोरिया का ये प्रयास सफल होता है तो प्रीमियर एंड्रूज का कहना है कि खेलों का ध्यान क्षेत्रीय इलाकों की तरफ केंद्रित किया जाएगा ताकि राज्य के लिए एक विरासत खड़ी की जा सके। प्रीमियर डैनियल एंड्रूज का यह भी कहना है कि राज्य सरकार आयोजकों से लगातार बातचीत कर रही है। उन्हें उम्मीद है कि वे पहले कभी न देखे गए राष्ट्रमंडल खेलों को राज्य में आयोजित कर सकेंगे।
This ends in the games coming here in 2026, them being like no other. Principally, because it's not just a handful of events in regional Victoria, this would be predominantly a regional Victorian Commonwealth Games. That's the point of difference. That's what's really special about this. And we're really pleased to have been able to enter this exclusive negotiating period.
और अंत में एक नजर कल यानी गुरुवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल तेज धूप खिली रहेगी, यहाँ अधिकतम तापमान 37 जबकि न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे, अधिकतम तापमान 25 जबकि न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में भी कल सवेरे हल्की बरसात की आशंका है, यहाँ अधिकतम तापमान 24 जबकि न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में कल आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान 31 जबकि न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में तेज धूप खिली रहेगी, यहाँ अधिकतम तापमान 31 जबकि न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ब्रिस्बेन में भी धूप छाओं का मौसम रह सकता है, अधिकतम तापमान 29 जबकि न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। डार्विन में कल बारिश के साथ तूफान की आशंका है, अधिकतम तापमान 32 जबकि न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल तेज धूप खिले रहने के आसार हैं, दिल्ली का अधिकतम तापमान 26 जबकि न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार में आज इतना ही, नमस्कार।